हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 11 और 12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति उच्छ्रित्तम नाति नीचम चैलाजिना कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् उद्योगमात्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस तरह इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग यानी वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। थोड़ा समझिए, कुछ पॉइंट्स हमें देखने होंगे। एक ये है कि हर जो अष्टांग योग है उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति तीर्थ स्थान में रहे, और भक्ति में भी इसका बहुत लाभ होता है। जैसे कि ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्ति के लिए गए थे तो नारद मुनि ने बोला था तब आप जाकर के मथुरा में जाइए जहाँ पे हमेशा भगवान का निवास होता है, और यमुना जी के तट पर ध्रुव महाराज ने वहाँ पे तपस्या करी थी। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि तीर्थ स्थानों में जाने से जो भक्ति है या कोई भी हम योग की पद्धति का अभ्यास करते हैं उसका कई हजारों गुना लाभ मिलता है और सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन जैसे प्रभुपाद यहाँ पे नोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप हम सभी लोगों के लिए जो भारत में भी रह रहे हैं सभी के लिए तीर्थ स्थान में रह पाना मुश्किल है। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं, अहो बत स्वपचतो गरीयान ये जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपो जुह्वनु शश्नु आर्य ब्रह्मानुचर नाम गृणंती ये ते। कि जिस व्यक्ति की जीभ पे भगवान का नाम आ रहा है उसने सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, सारे नदियों का स्नान कर लिया, सारे वेद अध्ययन कर लिए, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको बहुत सीधा सरल मार्ग मिला है। भगवान नाम के उच्चारण के द्वारा हमें तीर्थ भ्रमण करने का लाभ मिल जाता है, नदियों का स्नान करने का लाभ मिल जाता है और वेद अध्ययन करने का लाभ मिल जाता है अपने घर में बैठे हुए भी। और ये सारी चीजें हमारे लिए, हम भक्तों के लिए आवश्यक नहीं कि मृग छाला बिछाएं और मुलायम वस्त्र बिछाएं। लेकिन ये अच्छा रहता है कि जब करते समय अगर आसन हो तो आसन रख करके जप करना चाहिए और तुलसी जी के सामने जप करना चाहिए। ये उपदेश हरिदास ठाकुर जी ने लक्खा हीरा को दिया था कि तुलसी जी को सामने रख करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, और इस चीज को चैतन्य महाप्रभु भी करते थे। जब भी वो जप करते थे तो तुलसी जी सामने रहती थी, उनको हरि नाम सुनाते हुए अगर हम जप करें तो हमको बहुत लाभ होगा। जैसे कि हम लोग तो मंदिर में करते ही हैं, अगर घर में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो फिर जहाँ पे भी आप जप कर रहे हैं वहाँ पे जप करिए। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जिसका मन विचलित है और आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। यानी कि जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं, आजकल की जो योग की संस्था चल रही हैं, वो ये प्रमोट करती हैं या ये प्रचार करती हैं कि इस योग के अभ्यास के द्वारा आपकी इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, और ये हो भी जाती हैं, इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं कि इंद्रियों का उपयोग लोग भोग के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई हम प्राणायाम वगैरह कर लेंगे तो हमारा बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर वही भोग करेंगे और उस भोग के द्वारा हमें फिर से रोग हो जाएंगे। तो ये योग का उद्देश्य केवल शरीर को ठीक रखना नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य है शरीर को ठीक रखना, ताकि हम योग का अभ्यास करके अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके भगवान की प्राप्ति कर सकें। एक श्लोक जो प्रभुपाद ने यहाँ पे उद्धृत किया है, हरेर नाम वाला श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को उद्धृत किए थे, और ये समझ में आना चाहिए कि नाम एव केवलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म मार्ग से या फिर ज्ञान मार्ग से या फिर योग के मार्ग से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अगर उद्धार हो सकता है तो एकमात्र तरीका है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन के द्वारा। तो इसीलिए इस श्लोक को बोला जा रहा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। यानी और कोई तरीका व्यक्ति अपनाएगा तो उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, भगवान नाम के उच्चारण के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस बात को व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। और एक और बात है कि नाम का अगर आश्रय लेगा तो उसकी मुक्ति होगी ही, वो भगवान के धाम जाएगा ही। अन्य पद्धतियों का आश्रय लेगा तो चलने वाली नहीं है, लेकिन भगवान नाम का आश्रय ले रहा है कलयुग में तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करेगा। ठीक है, आगे के श्लोकों को देखेंगे। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एक शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, मनः संयम्य मच्चित्तो। पिछले वाले श्लोक में व्यक्ति को ये कह सकता है, अरे यहां तो बोल रहे हैं भगवान एक बिंदु पे स्थित करो, तो उसके बाद वाले श्लोक को भी देखना चाहिए। चौदहवें श्लोक के लास्ट में आप देखेंगे मच्चित्तो युक्त आसीत मत परह, यानी कि व्यक्ति को अपनी चेतना को भगवान में केंद्रित करना होता है, चाहे वह अष्टांग योग का अभ्यास भी करे। तो ऐसा नहीं है कि अष्टांग योगी जो है वो किसी बिंदु पे ध्यान करते थे, बल्कि भगवान विष्णु पे ध्यान करते थे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अवचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। बहुत अच्छा श्लोक है ये, भले अष्टांग योग के लिए है, लेकिन इसका उपयोग भक्ति में भी किया जा सकता है। देखिए, साधना भक्ति में हम वो सारे कार्य करते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा संपादित होते हैं और हमारे मन को हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साधना भक्ति में हम लोग अपने शरीर के द्वारा उन कार्यों को करते हैं, इंद्रियों के द्वारा उन कार्यों को करते हैं जो हमारे मन को प्रभावित करें। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि शरीर को सीधे बिठाना, गर्दन और सर को सीधा रखने से हमारा मन केंद्रित करने में हमें सहायता मिलती है। तो भले ही हम ध्यान नहीं करें, लेकिन जब हम जप करते हैं तो पीठ को गर्दन को सीधा रखना चाहिए और दोनों हाथों को घुटनों के पास रखना चाहिए। इससे नींद आने की संभावना नहीं होती है, और अगर नींद आती है, जबकि आती है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि नींद कब आ रही है, तो आप खड़े हो सकते हैं। भले ही हमारा मन नहीं लगे, लेकिन पहले हमको अपना आसन सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आप 15 मिनट बैठ सकते हैं तो 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर लंबे समय तक व्यक्ति जप करता है, मान लीजिए एक घंटा जप कर रहा है, तो आधे घंटे के बाद या 35 मिनट 40 मिनट के बाद मन थोड़ा थोड़ा नाम में लगने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो नाम उच्चारण का लाभ है ही, लेकिन नाम को अगर हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में वो प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से ये जो तरीका है, ये हम भक्ति योगी भी इससे लाभ उठा सकते हैं। और एक और बात है, यहाँ पे विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर गृहस्थ लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो अष्टांग योगी है वो तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वो कोई स्त्री संग नहीं कर सकता है। लेकिन गृहस्थ भक्त केवल संतान उत्पत्ति के लिए महीने में केवल एक बार पत्नी का संग करें, तब तो वो भक्ति में उत्थान करेंगे। और अगर भोगी की तरह रोज रोज कोई संग करे पत्नी का और फिर सोचे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्त्री संग के ही द्वारा आत्मा की चेतना सबसे अधिक बहिर्मुख होती है। ये बात स्त्रियों के लिए पुरुष संघ के संबंध में लागू होती है, चाहे वो पति से हो चाहे वो पत्नी से भी हो। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो फिर उसकी चेतना कृष्ण में स्थित रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गृहस्थ हो गया है तो उसको भोग करने का लाइसेंस मिल गया है, और इस प्रकार से व्यक्ति करेगा तो उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, उसका मन पूरी तरह से बहिर्मुख हो जाएगा और भगवान की भक्ति करने में उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, हम जरा देखते हैं तात्पर्य। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी जो मैंने बात नहीं बोली वो कुछ लोगों को बहुत कठोर लगेंगी, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, न कि भोगों की प्राप्ति। शास्त्र बोलता है विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय भोग तो हर योनि में प्राप्त है। तो इस प्रकार का जो भोग है, मैथुन और खाना पीना, ये तो हर योनि में प्राप्त है। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है जीवन का कृष्ण की प्राप्ति। और इस कारण से भोगों को कम से कम भोगों में कम से कम प्रवृत्त होना चाहिए। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप को की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यानी भोग नहीं है उद्देश्य योगाभ्यास का। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, यानी भगवान ही हैं विष्णु के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। स्वांश मतलब वो जीवात्मा नहीं है, भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। तो ये समझ में आ रहा होगा, हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्यवत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। तो देखिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा था, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे इस बात को। और ये बात केवल अष्टांग योगियों के लिए ही नहीं अपितु भक्ति योगियों के लिए भी होती है। हाँ, एक अच्छी बात होती है कि भक्ति योग में जैसे हम लोग भक्ति करते रहते हैं तो ये मैथुन सुख की इच्छा अपने आप ही हृदय से चली जाती है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अलग से प्रयास करने का मतलब ना करने का अर्थ है ये नहीं है कि व्यक्ति बस वहां हम तो भोग करते रहेंगे, जब ये इच्छा चली जाएगी तो चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अपने इंद्रियों को भी संयमित करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दमित मन से अपने इंद्रियों को संयमित करना है, साथ साथ भगवान की भक्ति करना है, तब ये इच्छा जाएगी। इसके बारे में हमने चर्चा पहले भी करी थी। महान ऋषि याग वल्के ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है, और इसके द्वारा व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसको आगे भगवान आगे भी बताएंगे कि शरीर की तपस्या है ब्रह्मचर्य। तो ये बात हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए कि भोग के द्वारा हमको सुख प्राप्त नहीं होगा, अपितु तप के द्वारा प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। आजकल के समाज में इस प्रकार का प्रचार होता नहीं है और इसीलिए लोग भगवद गीता इत्यादि सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही व्यक्ति भक्ति में भी आगे बहुत बढ़ता है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, भक्ति का भी नहीं। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों को शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती है, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन में विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते, उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात ये कि गृहस्थ ब्रह्मचारी को पत्नी का संग करने की अनुमति है, लेकिन फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं जो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताई थी, एक महीने में केवल एक बार, और वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। मान लीजिए किसी की एक संतान हो गई है, अब वो और संतान नहीं चाहता, तो अब उसको अपनी पत्नी का संग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य भी हैं, मैं अभी नाम नहीं बोल रहा हूँ, माता जी एक हैं, उनसे पूछा गया, उनकी वो 19 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी मतलब कृष्ण भावनामृत में, और 12 साल तक उन्हें अपने पति का कोई संग नहीं किया। तो एक रिपोर्टर पूछ रही थी कि आपका मैथुन जीवन के बारे में आप बताएंगे, तो कहते हैं हमारा कोई मैथुन जीवन नहीं है। तो आश्चर्यचकित हो गए थे, 12 साल तक उन्हें कोई संग नहीं किया। उसके बाद ऊपर से आदेश हुआ कि कम से कम एक आप लोगों को मतलब बच्चे की उत्पत्ति करनी चाहिए कृष्ण भावना में। तो फिर उन्होंने जिस बच्चे को उत्पत्ति करी भक्ति के नियमों का पालन करके, उसने 12 साल में ही दीक्षा प्राप्त कर ली, इतना अच्छा भक्त बना। तो प्रभुपाद जी ने भी इसमें भी समझाया था कि अगर किसी को कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करनी है, तो पत्नी और पति दोनों को 50-50 माला जप करना चाहिए, और उसके बाद ही ऋतुकाल में संग करना चाहिए जिसके द्वारा संतान उत्पत्ति हो। तो आप सब लोग कहेंगे ये सब करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आजकल के समाज में केवल भोगों की वासनाओं को, भोग के कार्यों को ही प्रबलता दी जा रही है। इस प्रकार का संयमित जीवन जीने की ट्रेनिंग नहीं है। और प्रभुपाद ने इस बात को बताया यहाँ पे कि बचपन से जब व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा मिल जाती है, तो उसके लिए ये बहुत क्लियर रहता है कि जीवन में उसको भोग की को प्रमुखता नहीं देनी है। तो जब वो गृहस्थ आश्रम में भी जाता है, तो उसका उद्देश्य केवल भोग नहीं होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और तीसरा, एक और लास्ट में जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो मन को एक उच्चतर रस प्राप्त होता है। तो भी इस प्रकार अगर वो रस प्राप्त नहीं है मन को, तो फिर निश्चित रूप से मैथुन जीवन ही एक हमारे व्यक्ति के लिए एक सो कॉल्ड सुख का साधन बनेगा, और उसके द्वारा वो मैथुन जीवन को त्याग नहीं पाएगा। इसीलिए कम से कम 50 साल के बाद तो व्यक्ति को मैथुन जीवन पूरी तरह त्याग देना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर संयमित गृहस्थ जीवन नहीं बिताया है, तो फिर उसके लिए वानप्रस्थ का अभ्यास करना भी बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही इस बात का पता चले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता है। ये बात हमने पहले भी चर्चा करी है, तो उस पर हम अभी विवेचना नहीं करेंगे। दूसरे अध्याय के श्लोक है ये, विगत भी पूर्ण कृष्ण भावनामृत हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्याद ईशाद अपि तस्य विपर्यय स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग सम्मतियों से भिन्न है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत, कि हम भगवान से विमुख हैं, और इस कारण से हम इस जगत को भगवान से भिन्न देखते हैं। इस जगत की परिस्थितियां जो हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, हमें लगता है कि ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, और जो और दूसरी और गहरी बात है कि जो जिसके नियंत्रण में है उससे अपने संबंध का हम अनुभव नहीं करते। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है वो अपने हृदय में भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता रहता है और वो समझता है कि भगवान उसके सुहृद हैं। तो सुख और दुख जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो वस्तुतः भगवान के द्वारा दिया जा रहा है और वो उसके अच्छे के लिए है। इस कारण से भक्त भयभीत नहीं होते। ये बहुत बहुत खैर ये उच्च चेतना का लक्षण है, फिर भी ये बात इसी प्रकार से है। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता है। एक और भय का कारण है कि हम लोग भोग चाहते हैं और हम जहां जहां पे हमारे भोग में बाधा आती है तो वहां उस परिस्थिति से व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो ये कृष्ण भावना का अनुशीलन करके व्यक्ति को हृदय में अपने आप ही श्रद्धा ये विश्वास जागृत हो जाता है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे और वो करने में पूर्णता समर्थ हैं और कृष्ण मेरी रक्षा कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने आप ही विगत भी यानी कि भयभीत होने की चेतना से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा एक भजन है, भजहुं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, कि मन को एक भक्त जी ने सॉन्ग लिखा ऐसे बोल अपने मन को बोल रहे हैं कि हे मेरे मन तुम भगवान विष्णु का चरणों का ध्यान करो क्योंकि वो अभय चरण है। जो भगवान विष्णु का ध्यान करता है कृष्ण की भक्ति करता है वो अपने आप ही भयों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।